लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमें आप लोगों को बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह 9:45 पर प्रेरितिक चैम्बर के केमरलेंगो कार्डिनल केविन फारेल ने संत मार्ता प्रेरितिक आवास से इन शब्दों में संत पापा फ्रांसिस के निधन की घोषणा की। प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे बड़े दुख के साथ संत पापा फ्रांसिस के निधन की घोषणा करनी पड़ रही है। आज सुबह 7:35 पर रोम के बिशप संत पापा फ्रांसिस पिता के घर लौट गए। उनका पूरा जीवन और उनकी कलीसिया की सेवा के लिए समर्पित था। उन्होंने हमें सुसमाचार के मूल्यों को निष्ठा, साहस और सार्वभौमिक प्रेम के साथ जीना सिखाया। खास तौर पर सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर पड़े लोगों के पक्ष में प्रभु येसु के सच्चे शिष्य के रूप में उनके उदाहरण के लिए अपार कृतज्ञता के साथ हम संत पापा फ्रांसिस की आत्मा को एक और त्रिएक ईश्वर की असीम दयालु प्रेम को समर्पित करते हैं। संत पापा को पहले कई दिनों तक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित रहने के कारण शुक्रवार 14 फरवरी 2025 को अगुस्तिनो जमेली पॉलीक्लिनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में 38 दिन रहने के बाद संत पापा अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए संत मार्था स्थित अपने वाटिकन निवास लौट आए और आज सुबह 7:35 पर हमसे और पूरी दुनिया से विदा ले ली। प्रथम लैटिन अमेरिकी और प्रथम जेसुइट 266वें संत पापा फ्रांसिस का परिचय। संत पेत्रुस के 265वें उत्तराधिकारी संत पापा फ्रांसिस लतीनी अमेरिका राष्ट्र अर्जेंटीना से आने वाले प्रथम येसु समाजी परमाध्यक्ष थे। 13 मार्च 2013 को परमाध्यक्ष के रूप में चुनाव किए जाने की घोषणा की गई और 19 मार्च को आपने आधिकारिक तौर पर अपना परमाध्यक्ष कार्यकाल शुरू किया। आपका पहले का नाम जॉर्ज मारियो बेरगोलियो था। आपने संत पापा के रूप में अपना नाम असीसी के संत फ्रांसिस के सम्मान में फ्रांसिस चुना। आपका जन्म अर्जेंटीना के बोइनस आयरस में 17 दिसंबर 1936 को हुआ। आपके पिता अर्जेंटीना में इतालवी प्रवासी थे और अर्जेंटीना रेल सेवा में कार्यरत थे। केमिकल इंजीनियरिंग से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद आप पुरोहित बनने की इच्छा से सेमिनरी गए और 1958 में आपने जेसुइट नौशिष्यालय में प्रवेश किया। आपने चिली में मानवकी की पढ़ाई की और 1963 में बोइनस आयरस में सन मिगले सेमिनरी से दर्शन शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई समाप्त की और इमाकुलेट कंसेप्शन ऑफ सांता फे में अध्यापन का कार्य भी किया। 13 दिसंबर 1969 को आप पुरोहित अभिषिक्त किए गए। अर्जेंटीना के सान मिगवेल में आप नोविशिएट में नोविस मास्टर की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ ईश शास्त्र के प्राध्यापक, प्रोविंस कंसल्टर और कॉलेज के रेक्टर का भी दायित्व संभाला। 1973 से 1979 तक येसु धर्म समाज के प्रोविंशियल तथा 1980 से 86 तक आप सन मिगवेल में दर्शन और धर्म तत्व विज्ञान विभाग के अध्यक्ष रहे। जर्मनी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत आप कोर्दोबा में आध्यात्मिक मार्गदर्शक रहे। 20 मई 1992 को आप आउका और बोइनस आयरस के सहयोगी धर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए और 3 जून 1997 को आप बोइनस आयरस के महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए। विगत कई वर्षों से आप पूर्वी रीति की कलीसिया और विश्वासियों के भी स्थानीय धर्माध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। 2005 से 2011 तक आपने अर्जेंटीना के कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। सन 2001 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने आपको कार्डिनल पद पर प्रतिष्ठापित किया। कार्डिनल पद पर रहते हुए आपने वाटिकन की दिव्य भक्ति और संस्कार, याजक वर्ग, समर्पित जीवन एवं प्रेरितिक जीवन हेतु समुदायों से संबंधित परम धर्म पीठीय धर्म संघों, संगठनों और समितियों के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अतिरिक्त परिवार संबंधी परम धर्म पीठीय परिषद लतीनी अमेरिका के लिए गठित परम धर्म पीठीय परिषद में भी आप सदस्य रह चुके हैं। हम आपको शांति के परमाध्यक्ष के रूप में याद करते हैं। आपकी अथक अपीलों और निरंतर यात्राओं के माध्यम से, जो सबसे अन्यायपूर्ण मानव निर्मित आपदाओं में से एक, युद्ध के परिणामों से पीड़ित लोगों के प्रति आपकी निकटता को दर्शाती है। अपने अंतिम सार्वजनिक प्रदर्शन में आपने वही दोहराया जो शांति के परमाध्यक्षीय पद का नारा बन गया था। हर कोई जानता था कि उनकी सभा के अंत में इसकी उम्मीद की जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ताकत नहीं खोई। उनका जीवन प्रभु येसु और उनकी कलीसिया की सेवा के लिए समर्पित था। मृत्यु के एक दिन पहले ईस्टर उर्बी एत ओर्बी आशीर्वाद के दौरान आपके शब्दों में उन अनगिनत अपीलों की प्रतिध्वनि थी जो आपने वर्षों से की थी, जिसमें आपने विश्व नेताओं से हथियार डालने और बातचीत की ओर रुख करने का आग्रह किया था। जब आपने किसी से अपना संदेश पढ़ने के लिए कहा तो उन्हें बोलने में कठिनाई हुई, लेकिन उनकी आवाज हालांकि कमजोर थी, संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण और दुनिया भर के स्क्रीन पर गूंज रही थी। अपने 12 साल के परमाध्यक्षीय काल के पहले दिनों से ही संत पापा फ्रांसिस ने शांति वकालत के लिए वैश्विक कैथोलिक आंदोलन का नेतृत्व किया। शब्दों और कर्मों के माध्यम से उन्होंने सुलह की शक्ति, संवाद के महत्व और हिंसा के सभी रूपों को समाप्त करने की तात्कालिकता में अपने अडिग विश्वास को प्रदर्शित किया। परिधीय क्षेत्रों के संत पापा कहे जाने वाले संत पापा फ्रांसिस ने हमेशा संघर्ष से पीड़ित लोगों को याद करने के लिए समय निकाला। मीडिया का सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षण करने वाले क्षेत्रों में शांति के लिए प्रार्थना करते हुए वे अपनी प्रार्थनाओं को उन क्षेत्रों तक पहुंचाने में भी कभी विफल नहीं हुए जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, फिर भी दुनिया द्वारा सबसे ज्यादा भुला दिए गए हैं। उनके सबसे प्रतीकात्मक इशारों में से एक और उनके परमाध्यक्षीय काल का एक विशेष रूप से उल्लेखनीय क्षण अप्रैल 2019 में था, जब उन्होंने एक भयानक गृह युद्ध से जूझ रहे देश के मुखिया दक्षिण सूडानी नेताओं के पैर चूमने के लिए घुटने टेक दिए। वाटिकन में राष्ट्रपति साल्वा कीर और उनके प्रतिद्वंद्वी रीक मचर का अभिवादन करते हुए संत पापा ने अपनी विनम्रता में उनके पैर चूमे, नेताओं से अपने हथियार डालने और शांति के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। शांति के लिए उनके आह्वान में अतीत के युद्धों की विरासत, राष्ट्रों और लोगों के बीच किए गए हिंसक अत्याचारों से हुए जख्मों और यह सुनिश्चित करने की बात भी शामिल थी कि कुछ गलतियां कभी न दोहराई जाए। नवंबर 2019 में हिरोशिमा और नागासाकी की अपनी यात्रा के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने परमाणु हथियारों के खिलाफ एक शक्तिशाली अपील की। नागासाकी में परमाणु बम हाइपोसेंटर पार्क पर खड़े होकर, उसी स्थान पर जहां परमाणु बमों ने अभूतपूर्व विनाश किया था, उन्होंने ऐसे हथियारों और उन्हें रखने वाले सभी लोगों द्वारा किए गए विनाश की निंदा की और कहा, युद्ध के प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग अनैतिक है, ठीक उसी तरह जैसे परमाणु हथियारों का कब्जा अनैतिक है। संत पापा ने लगातार विनाश की जड़ों को संबोधित करने की कोशिश की, सत्ता में बैठे लोगों से जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया। 24 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने एक भयावह सवाल उठाया, घातक हथियार उन लोगों को क्यों बेचे जाते हैं जो व्यक्तियों और समाज पर अनगिनत सीमाएं पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, दुख की बात है और इसका जवाब, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बस पैसे के लिए है। पैसा जो खून से लथपथ है, अक्सर निर्दोषों के खून से। उन्होंने हथियारों में पैसे के निवेश को पागलपन बतलाया और हथियारों के काले बाजार से जुड़े कर्ज की निंदा की। जैसे जैसे दुनिया 2025 में प्रवेश कर रही है, उनका संदेश हमेशा की तरह जरूरी बना हुआ है। हथियारों से लोगों का उपनिवेशीकरण बंद करें। पीड़ित लोगों के प्रति संत पापा की निकटता और वैश्विक हिंसा को समाप्त करने की उनकी वकालत हमेशा प्रथम स्थान पर रही। व्यक्तिगत कठिनाइयों के क्षणों में भी संत पापा फ्रांसिस शांति के लिए प्रतिबद्ध रही।
वैश्विक कैथोलिक कलीसिया के 266वें धर्मगुरु संत पापा फ्रांसिस ने 21 अप्रैल 2025 को प्रातः रोम वैटिकन के अपने निवास संत मार्था में अंतिम सांस ली। संत पापा फ्रांसिस पास्कर रविवार को संत पेत्रुस महागिरजा घर के झरोखे में अंतिम बार अपनी उपस्थिति देते हुए रोम और विश्व के नाम अपना अंतिम संदेश दिया। संत पापा फ्रांसिस के पास्का संदेश का सार विश्व में शांति स्थापना की अपील रही। उन्होंने युद्धग्रस्त और विभिन्न तरह की कठिनाइयों से संघर्ष कर रहे देशों के लिए प्रार्थना करते हुए शांति और भ्रातृत्व की स्थापना का आह्वान किया। विश्व के नाम अपना संदेश प्रस्तुत करने के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने सभों को पाप क्षमा दंड मोचन का प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद संत पापा ने अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना अपनी प्रथा अनुसार विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग अपनी निकटता और सामीप्य प्रस्तुत करने हेतु अपनी खुली कार में संत पेत्रुस के प्रांगण का दौरा किया। उन्होंने सबों को अपना प्रेम और आशीर्वाद दिया। विशेषकर उन्होंने छोटे बच्चों के प्रति अपने प्रेम प्रकट किए। करीबन 25 मिनट तक उन्होंने संत पेत्रुस के प्रांगण में विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया और सबों के प्रति प्रेम और आभार प्रकट किए, मानो वे सबों से अंतिम विदाई ले रहे हों। पुनरुत्थान पर्व पास्का सोमवार को किसे पता था कि वे अपने को उसी स्थल के लिए प्रस्थान करेंगे जहां से वे आए थे और जहां जाने की घोषणा उन्होंने सदैव अपने विश्वास में परम धर्माध्यक्ष काल के दौरान की थी। हम संत पापा फ्रांसिस की दिवंगत आत्मा की अनंत शांति हेतु प्रार्थना करें। श्रोताओं, अपने 12 वर्षों के परम धर्माध्यक्षीय काल में संत पापा फ्रांसिस ने 68 देशों का दौरा किया और ईश्वर के वचन तथा उनके प्रेम की सांत्वना को पूरे मानव परिवार में पहुंचाने के अथक मिशन को जीवन दिया। यदि संत पापा की प्रेरितिक यात्रा को किलोमीटरों की संख्या पर विचार किया जाए तो रियो से आजिशो तक दर्जनों बार विश्व का चक्कर लगाते हुए संत पापा फ्रांसिस की 47वीं प्रेरितिक यात्राओं ने उन्हें और उनकी निकटता के संदेश को प्रत्येक महाद्वीप और पृथ्वी के लगभग प्रत्येक कोने तक पहुंचाया। इन वर्षों और यात्राओं के दौरान यह बात और अधिक स्पष्ट हो गई कि उन्होंने तुरंत ही अपनी दिशा निर्धारित की थी। जब 2013 में ब्राजील के लिए प्रस्थान करते समय उनकी तस्वीर खींची गई थी, जिसमें वे अपना छोटा काला बैग लेकर विमान की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उड़ान के दौरान वे विमान के गलियारों में ऊपर नीचे घूमते रहे, विमान में मौजूद पत्रकारों से व्यक्तिगत रूप से मिले और उनसे बातचीत की, उनसे जुड़े और ऐसे व्यावहारिक रिश्ते बनाए जो समय की कसौटी पर खरे उतरे। विमान से उतरने के बाद उन्होंने बंद वाहन का उपयोग करने से इनकार कर दिया, बल्कि एक साधारण कार या खुली जीप में यात्रा करना पसंद किया, जिससे वे लोगों से जुड़ सकें, उनके जीवन और उनकी भावनाओं को साझा कर सकें। यह भी प्रतीकात्मक है कि संत पापा फ्रांसिस की पहली विदेश यात्रा कोई विदेशी यात्रा नहीं थी, बल्कि दक्षिणी इटली के एक द्वीप लंपेदुसा की थी, जो हिंसा, जलवायु परिवर्तन और गरीबी से भाग रहे सैकड़ों हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए यूरोप में प्रवेश का बंदरगाह है। अपनी पहली यात्रा के लिए लंपेदुसा को चुनते हुए संत पापा फ्रांसिस ने तुरंत इस बात पर प्रकाश डाला था कि वे गरीबों और विशेष रूप से आश्रय, सुरक्षा और भविष्य की तलाश कर रहे प्रवासियों को प्राथमिकता देंगे। व्यापक दृष्टिकोण से यह हाशिए पर पड़े लोगों का प्रतीकात्मक आलिंगन उनकी महानता की आधारशिला, गरीबों, हाशिए में पड़े लोगों, कमजोरों की पुकार पर ध्यान देने का एक अटल आह्वान था। संत पापा फ्रांसिस की यात्राएं औसतन एक वर्ष में लगभग 4 यात्राएं रहीं, जो उन्हें अलग अलग 68 देशों में ले गईं, जिनमें से प्रत्येक ने उन्हें पूरे मानव परिवार के लिए न्याय, शांति, समावेश और प्रेम का आह्वान करने का अवसर दिया। हालांकि उनका शरीर उन्हें निराश करने लगा था, जिसके कारण उन्हें व्हीलचेयर स्वीकार करनी पड़ी और यहां तक कि उन्हें एक या दो बार यात्राएं रद्द करनी पड़ी, लेकिन उनका आह्वान कभी कमजोर नहीं हुआ। नवाचार के अनुसार अधिकारी और राजनेता हमेशा किसी प्रेरितिक यात्रा की शुरुआत में उनका संबोधन सबसे पहले सुनते थे, जिन्हें संबंधित देश के संदर्भ और समस्याओं के अनुसार संत पापा फ्रांसिस कभी भी आलोचना और यहाँ तक कि निंदा के सीधे शब्दों को सुनाने से पीछे नहीं हटते थे, जबकि वे उन्हें जवाबदेह होने और उनसे आम भलाई को बढ़ावा देने के लिए आग्रह करते थे। दूसरी ओर विश्वासियों के लिए तथा धर्म समाजों तथा सुसमाचार प्रचार के लिए समर्पित धार्मिक पुरुषों और महिलाओं के लिए उनके शब्द हमेशा निकटता, सहभागिता और कृतज्ञता के होते थे। आधिकारिक स्वागत समारोहों की औपचारिकता धूमधाम से संपन्न होते ही कठोरता फीकी पड़ जाती और खुशी का स्थान ले लेती, क्योंकि उन्हें सभी लोगों से गर्म जोशी से स्वागत मिलता, विनम्र उपहार मिलती और उन लोगों की आश्चर्यजनक निगाहें मिलती जिन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वे वास्तव में उनकी उपस्थिति में हैं। यूरोप में सांसारिकता के प्रसार और याजकों के यौन दुराचार के कारण कलीसिया पर पड़ने वाले प्रभावों के बीच संत पापा फ्रांसिस ने बेल्जियम का दौरा करने का फैसला लिया। विभाजन, लोकलुभावनवाद और यहाँ तक कि युद्ध से लगातार अंधकारमय होते महाद्वीप के हृदय में उन्होंने अधिकारियों से शांति के लिए सेतु बनने का आग्रह किया और लिंग दुर्व्यवहार और गर्भपात के बारे में कठिन चर्चाओं से कभी पीछे नहीं हटे। संत पापा फ्रांसिस की कई यात्राएं शांति और मेल मिलाप की तीर्थ यात्रा के रूप में रहीं, जिसमें राजनेताओं को पक्षपातपूर्ण हितों पर काबू पाने और अपने लोगों की आम भलाई के लिए प्रतिक्रियाओं को आगे बढ़ने का खुला निमंत्रण मिला। कोलंबिया, दक्षिणी सूडान, इराक और कनाडा की उनकी यात्राएं याद आती हैं, लेकिन सबसे बढ़कर उन्होंने दुनिया भर में घूमकर सबसे छोटे और सबसे कमजोर समूहों जैसे मंगोलिया में कैथोलिकों का 1500 सदस्य समुदाय, जो दिखाया कि उन्हें उनकी परवाह है और यीशु की तरह उन्होंने भी हाशिए पर चलना चुना है। एक यात्रा जिसका हम सभी को इंतजार था लेकिन अभी नहीं हुई, वह थी अर्जेंटीना की, जो संत पापा फ्रांसिस का गृह देश है।